देवियों, सज्जनों, आज हम फादर्स डे मना रहे हैं। पिछले महीने मदर्स डे मनाया। जैसे अभी संजय जी कह रहे थे, इनको हम कभी सोच ही नहीं पाते कि इसको अलग अलग मनाने की जरूरत है। बच्चों के लिए तो पेरेंट्स एक जैसा होते हैं, माँ हो या बाप हो। ये अलग बात है कि सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग पर्सनालिटीज है। और ये जो अलग अलग पर्सनालिटीज है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। ईश्वर ने ही ऐसी बनाई है और उस हिसाब से उनका स्वभाव है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियां है। दोनों का अपना अपना महत्व है हमारे जीवन में। शतपथ ब्राह्मण में कहा, शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है वैदिक लिटरेचरों में, कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वो इंसान बड़ा भाग्यशाली है जिसके मां बाप और गुरु हैं। वैसे तो बिना मां के भी बच्चे बढ़ते हैं, बिना बाप के भी होते हैं, बिना टीचर्स के भी होते हैं, पर जिनके पास ये तीनों हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत बहुत प्रिविलेज्ड हैं, विशेषाधिकार है उनका। क्योंकि जीवन में पैदा होने के बाद केवल बच्चा और जो जानवरों के बच्चे में बहुत कम अंतर होता है। वो जो हमारा पढ़ना लिखना, सोचना समझना, सही डिसीजन लेना, जीवन में आगे बढ़ना, इसमें तीन लोगों का खास करके योगदान होता है। एक तो मां बाप और जो टीचर्स होते हैं। यहां अमेरिका में अभी टीचर्स की इतनी वैल्यू नहीं है, और इसीलिए हमारे यहां कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मां को देवता के समान रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट योर मदर लाइक गॉड, रेस्पेक्ट योर फादर लाइक गॉड, रेस्पेक्ट योर टीचर लाइक गॉड। क्योंकि ये नहीं होते तो जैसा हमारा जीवन है वैसा नहीं होता। जिस तरह की जिंदगी आज हम जी रहे हैं, जिस तरह की पर्सनालिटी जी हमारी है, वो नहीं होता जीवन में अगर ये तीन लोग नहीं होते। सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, सबकी अलग अलग काम है। हमारे जीवन में सबका महत्व है और बच्चे को दोनों चाहिए। बच्चे की अगर हम पूर्ण विकास करना चाहें, समग्र विकास करना चाहें, ना केवल मां से ना केवल बाप से विकास हो सकता है। ठीक है, यहां ऐसे कल्चर है कि जहां बहुत सारे बच्चों के सिंगल मदर होते हैं, सिंगल फादर होते हैं, पर जिनके दोनों हैं, जिनके मां बाप हैं और जो सिर्फ एक से बड़ा है, दोनों की जो साइकोलॉजी है, जिनको जो दोनों की जो मेंटल स्टेट है, उसमें जमीन आसमान के अंतर है। वो अंदर जो एक पूर्णता है, ये जो समग्रता है, ये तभी होती है जब बच्चा दोनों के साथ रहता है, दोनों का प्यार पाता है। इसलिए हमारे लिए दोनों का महत्व है। पर पिछले बार हमने माओं की प्रशंसा की थी, अब यह भी एक बड़ी मुश्किल बात है कि मां की तारीफ करो, बाप की तारीफ करो। ये हमारे कल्चर में ये थोड़ा अटपटा होता था, क्योंकि क्या तारीफ करोगे मां की बाप की, वो तो तारीफों से ऊपर होते हैं। तारीफ तो एक फॉर्मेलिटी है, एक आप तारीफ करके कुछ बदल नहीं सकते। पर क्या है कि कल्चरल डिफरेंसेस है। हम जिस देश में, जैसे संजय जी कह रहे थे, अब यहां एक दूसरे टाइप की सोसाइटी है, दूसरे टाइप की कल्चर है, ठीक है, इसी बहाने कम से कम हम जिस तरह के सोसाइटी में अब भारत में भी वो पुराना भारत अब नहीं रहा, बड़े बड़े शहरों में काफी बदलाव आ चुका है, बच्चे और माँ बाप में काफी काफी डिफरेंसेस आने लगे हैं, तो साल में एक दिन कम से कम उनके बारे में हम तो चर्चा करें, गुनगुनाएं, जानें, अपने माइंड में रिफ्रेशमेंट लाएं। उस दिन हमने मां की चर्चा की, आज पिताजी की चर्चा करेंगे। दोनों का बच्चे के जीवन में दोनों के अलग अलग महत्व है। कोई अगर कहे कि मां बड़ी है या पिता बड़ा है, ये बड़ा मुश्किल काम है। महाभारत में श्लोक है, मातृस्तु गौरवा धन्य पितृनन्य तुमे निरे दुष्करम कुरुते माता विवर्धयति प्रजा। मां की प्रशंसा है। कुछ लोग मानते हैं कि मां बड़ी है, कुछ लोग मानते हैं पिता बड़ा है। वैसे तो आजकल पिता माता में बहुत कम अंतर रह गया है कि दोनों एक टाइप के काम करते हैं, पर पहले दोनों के काम अलग अलग होते थे। पिता का काम होता था घर के लिए कमाना, और मां का काम होता था घर को मैनेज करना। अब तो ज्यादातर दोनों एक दूसरे के काम को बांटते हैं, तो काफी सारी जो दूरी है वो खत्म हो चुका है। तो इसीलिए, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग हुआ करते थे, तो हमेशा डाउट रहता था कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो कुछ लोगों को लगता था पिता बड़ा है, कोई किसी को लगता था मां बड़ी है। पर नेचुरली मां का पलड़ा हमेशा भारी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा मां का जो जन्म के समय जो पीड़ा है, गर्भ में बच्चे को धारण करने की जो पीड़ा है, उसका कोई बाप, उसका कोई कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, बच्चों की मां की जो सेक्रीफाइस। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता की जो जीवन में जो त्याग है, जो समर्पण है, उसको कोई कम मांग सके। महाभारत में जब एक आख्यायिका आती है वन पर्व में, यक्ष और युधिष्ठिर के जो डायलॉग है, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, तो उसमें यक्ष पूछता है इस धरती से भारी कौन है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं मां है, क्योंकि धरती सब कुछ सहती है, आप उस पर कूदते हैं, नाचते हैं, खोदते हैं, कुछ भी करते हैं, पर वो जड़ है, उसमें कोई जान नहीं है। मां के साथ भी वो सब कुछ होता है जो धरती के ऊपर होता है, पर मां धरती से इसीलिए बड़ी है कि वो जिंदा है, या जिंदा होकर भी उसको भी दर्द होता है, पर उसके बावजूद भी वो सहती है। ये डिफरेंस है, इसीलिए वो मां से, मां पिता से, धरती से बड़ी है। तो पूछा, किमस्वित गुरुतरा भूमि किमस्वित उच्चतरम चखा, तो जमीन से धरती से भारी कौन है और आकाश से बड़ा कौन है। धरती से भारी मां है और आकाश से बड़ा पिता है। माता गुरुतरा भूमि पिता चोक्चतरम खात, आकाश से बड़ा पिता है। पिता और माता में जो एक बेसिक अंतर है, और हमेशा जैसे अभी स्मृति जी कह रही थी, फादर्स के बारे में कोई गाना नहीं होता है, पापा हमेशा मिसअंडरस्टूड रहते हैं। शुरुआत होता है, बच्चा जब पैदा होता है वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होता है। छोटे बच्चे को हमेशा लगता है उसका जो पापा है वो सुपर हीरो है, वो उसको उठा करके घुमाता है, जब गाड़ी में घुमाता है, जिसको खेल कसरत दिखाते हैं, उसको लगता है जब भी कोई मुश्किल होता है तो उसको लगता है मेरे पापा बचाने वाले हैं, तो सुपर हीरो लगता है। अब बच्चा जैसे जैसे टीन एज तक आता है, अब वो उसको समझ में आता है कि पिता की औकात कितनी है। अब प्रॉब्लम होता है कि अब लगता है कि पिता जो है उसका दुश्मन ज्यादा है, क्योंकि हर बात पर टोकता है, हर बात पर कंट्रोल है, हर बात पर मना है। अब धीरे धीरे बच्चों के लिए खास करके बेटों के लिए तो जो जो ट्रेडिशनल पापा और वो जो बेटे बाप बेटे का जो रिलेशन होता था, टीनेज के बाद हमेशा बेटों को बेटों का पिता के प्रति एक विद्रोह भाव रहता था। काफी सालों तक बच्चों को लगता है पिता जो है मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि हर बात पर टोकता है। तो ये जो मिस बचपन में उसको सुपर हीरो के रूप में समझना या टीनेज में जाकर के उसको दुश्मन समझना, हमेशा बाप जो है वो मिसअंडरस्टूड रहता है। और बाप की एक प्रॉब्लम है, बाप रो नहीं सकता क्योंकि बेचारा मर्द है। मर्द सोचते हैं रोने से वो लड़की जैसा बन जाएंगे। अब ये भी एक मिसकंसेप्शन है, रोना नेचर का स्वभाव, जितना रो उतना अच्छा बात, पर ज्यादातर लोग रोते नहीं है। पुरुष कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशन को दबाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए भी बच्चों को लगता नहीं कि मेरे बाप मेरे से। ट्रेडिशनल जो पापा होते थे, जरूरी नहीं इंडियन, दुनिया के हर तरह के जो ट्रेडिशनल पापा हैं उनमें तो ये एक विचार है कि बच्चों को कभी प्यार दिखाना नहीं। वो कितना भी प्यार करें हमेशा मुंह में उनके बड़ा बड़ा शक्ति रहती थी। और आज भी होता है, जो ट्रेडिशनल फादर्स होते हैं बड़े शक्ति से पेश आते हैं, वो पीछे रोते होंगे, रात को नींद उनकी नहीं आती होगी, पर अपने टीन एज के बच्चों के साथ हमेशा शक्ति से बात करते हैं, मुस्कुराते भी कम है। शायद ये सोच के कि जितना मैं सख्त रहूं तो बच्चा शायद उतने गलत रास्ते पर जाएगा। और यही कारण है बच्चे मां बाप की मां की या बाप की शक्ति से अच्छे बन जाते हैं, पर बाप हमेशा के लिए गलत तरीके से समझा हुआ माना जाता है। पिता का क्या योगदान है? देखिए महाभारत का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, तपसा देवते ज्याभिवंदनीन तितिक्षय सुप्रशस्ते रूपाये चापि हन्ते पितरा सुतान। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके पास संसार के हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर दुनिया में अगर 700 करोड़ लोग हैं तो उनमें से आधी सी संख्या से भी ज्यादा मोर देन हैव लोग गरीब हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड से नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड से तो और बहुत गरीब होंगे, मतलब जिनको रोज प्रॉपर खाना भी मिलता है कि नहीं मिलता ये मुश्किल है। वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, वो एशियन कॉन्टिनेंट हो, आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीब है, वो भी अपने बच्चों को पालते हैं, कितनी मुश्किल से पालते हैं, दिन रात मेहनत करके तपस्या, खुद अपने आप को तपाते हैं अपने बच्चे को लायक बनाने के लिए। हमारे आप में से बहुत होंगे जो आज ईश्वर की कृपा से समृद्ध हैं, पर उनके पिता माता इतना समृद्ध नहीं रहे होंगे। बच्चा क्योंकि अच्छा पढ़ता है इसीलिए वो जमीन जायदाद बेच करके उसको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, स्कूलों में कॉलेजों में अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, देश से बाहर भेजते हैं, अपने आप को गरीबी में रखने के लिए मजबूर करके, अपने आपको सारे दुखों को झेलते हुए भी अपने बच्चों की पढ़ाई में अपने बच्चों की भविष्य में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। और ये तो भारत में ज्यादातर अगर आप पिछले पीढ़ियों को देखेंगे, जो फर्स्ट जनरेशन को जो यहां आए होंगे, उनमें से ज्यादातर लोग वही होंगे जिनके फैमिली उनको यहां भेजने के लिए कितने मुश्किलातें उठाई होंगी। पिता का रोजगार कम होता है, उस काम रोजगार में इसमें भी बहुत कम में गुजारा करते हैं, जिंदगी भर गुजारा करते हैं क्योंकि बच्चे लायक बन जाए। पूरी जिंदगी मां बाप ढंग से कपड़े नहीं पहनते, ढंग से खाना नहीं खा पाते, कहीं घूमने नहीं जाते क्योंकि उनका बच्चा लायक बन जाए। और बच्चा लायक बनता है, वो जीवन में हर तरह के सुख भोगता है, वो पूरे दुनिया को देखता है, पर वो मां बाप के नसीब में नहीं होता। इसीलिए मां बाप हमारे लिए पूजनीय होते हैं, वो तपस्या करते हैं, इस मंदिर से उस मंदिर तक जाकर के माथा रगड़ते हैं कि मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए। गर्मी सर्दी धूप छाया सहते रहते हैं, अपने से बड़े लोगों की तारीफें करते हैं, अपने बेटे को कहीं लगा दें, अपनी बच्ची को कहीं ठीक जगह पहुंचा दें, जहां से जिस तरह के हेल्प लिया जा सके, कहीं से स्कॉलरशिप हो, कहीं से एडमिशन हो, कहीं से नौकरी हो। कभी कभी दुश्मनों की भी प्रशंसा करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि बच्चे लायक बन जाएं, और कभी कभी नालायक बच्चे भी पूरी जिंदगी भर की कमाई पर पानी फेर देते हैं जब वो जेल जाते हैं या करप्शन में या किसी दूसरे प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो भी मां बाप अपने जिंदगी भर की जो कमाई हुई इज्जत है उसको दांव पर लगा करके उसके साथ देते हैं। जब हमारे पर कोई मुसीबत आता है ना, वो किसी भी तरह की मुसीबत हो, जब आपके पास कोई नहीं होता है, वो मां बाप खड़े होते हैं, वो हजार 10,000 किलोमीटर दूर है या 20,000 किलोमीटर दूर है, वो 90 साल का 100 साल का बुजुर्ग है या बिस्तर पर पड़ा हुआ हो, साथ देने के लिए मां बाप ही मिलते हैं और कोई रहे न है। ये गारंटी के साथ एक आदमी सोच सकता है कि मेरे मां बाप कोई हो ना हो साथ में है। इसीलिए जब हम दूर होते हैं, और जिन लोगों के मां बाप उनसे दूर रहते हैं उसके बावजूद भी कभी पिता का या मां का देहांत हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो ऊपर से कोई छाया हट गई जो बड़ी परमानेंट, जो बहुत स्टीडी, वो जो हमेशा के लिए रहने वाली एक छाया थी, जिसके बारे में कभी आप डाउट कर ही नहीं सकते। आप अपने पति या पत्नी पर डाउट कर सकते हैं, आप अपने बच्चों पर डाउट कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों पर डाउट कर सकते हैं, पर आप जीवन में कभी ऐसी सोच ही नहीं सकते कि आपका कभी संकट हो, आप अपनी मां को या बाप को याद किया या आपने उनकी उनकी जरूरत महसूस की और वो आपके साथ नहीं दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इतने सारे कष्टों को सहते हुए वो हमारे जीवन, वो अपने बच्चों की उन्नति चाहते हैं। मां बाप के बच्चों के लिए जो पिता का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है प्रोटेक्शन। वो पिता से जो सुरक्षा का बोध होता है, जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये जो कि मैं सिक्योर हूं, मैं सेव हूं, ये पूरी दुनिया में पापा के कारण बच्चों की जो मानसिकता में जो सुरक्षा बोध ज्यादा आता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जिन बच्चों के पापा उनके साथ नहीं है वो बच्चे अंदर सुरक्षा, उनकी असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना ज्यादा होती है। बड़े होने पर भी, बुजुर्ग होने पर भी उनके अंदर उस तरह की फेबिया बनी रहती है जिनके पापा उनके साथ नहीं होते हैं। ये जो सुरक्षा के, हो सकता है आपका हमारा पापा बड़ा कमजोर हो, पिता बड़ा शारीरिक रूप से कमजोर हो, पर बच्चे के लिए वो सुरक्षा की भावना अपने पिता से ही आती है। दुनिया में जब हम उन्नति करते हैं, दो जगह व्यक्ति जब हारता है तो सुखी होता है, हर जगह हम जीत चाहते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में था कि पिता और आचार्य, मतलब टीचर्स और पेरेंट्स, जब हारते हैं तो बड़े खुश होते हैं। मतलब जब अपने बच्चा उनसे ज्यादा आगे बढ़ जाता है, उनका शिष्य उनसे ज्यादा आगे बढ़ जाता है, उनको ज्यादा खुशी होती थी, हारने पर खुशी होती थी। आजकल टीचर्स के ऊपर यह दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि टीचर्स प्रोफेशनल हो चुके हैं। अब तो वो स्टूडेंट्स के कैरियर भी बर्बाद कर देते हैं, और खास करके साइंस के फील्ड में भी हम ज्यादा देखते हैं, उनका स्टूडेंट अगर कुछ ज्यादा ही कुछ काम अच्छा करता है तो प्रोफेसर उसको चक्कर में फंसाने की कोशिश करता है। पर आज भी दावे के साथ कहा जा सकता है कि मां बाप के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती, आज भी मां बाप खुद को हारा हुआ खुश महसूस करते हैं अपने बच्चों से। इसका अर्थ नहीं कि हर टीचर ऐसा है, आज भी आपको लाखों करोड़ों टीचर मिलेंगे जो अपने शिष्य को अपने से बड़ा देख करके खुश होते हैं, क्योंकि टीचरशिप आजकल एक प्रोफेशन बन चुका है, तो प्रोफेशन में तो कोई भरोसा नहीं है कि कौन आदमी किस तरह का। पर मां बाप का जो नेचुरल रिलेशन है, आज भी बच्चे जब उनसे आगे बढ़ते हैं, जब उनको हराते हैं, वो ज्ञान में हराए, खेल में हराए, शरीर से हराए, सुंदरता से हराए, तो उनको ज्यादा खुशी होती है। एक व्यक्ति ने एक कविता लिखा इंग्लिश में, कि आप उसे समझ सकते हैं कि पापा का एक ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होती है, व्हाट मेक्स ए डैड। ये मैंने इंटरनेट से चुराया है, पर वो आप तक पहुंचाने के लिए, God took the strength of a mountain, the majesty of a tree, the warmth of a summer sun, the calm of a quiet sea, the generous soul of nature, the comforting arm of night, the wisdom of the ages, the power of the eagle's flight, the joy of a morning and spring, the faith of a mustard seed, the patience of eternity, the depth of a family need, then God combined these qualities. When there was nothing more to aid, he knew his masterpiece was complete, and so he called it that. ये जो जिस बच्चे ने या जिस व्यक्ति ने भी इस कविता को लिखा है, आप इसको बारीकी से देखें, पिता की जो एक कॉमन पिता का, एक कॉमन फादर का जो कैरेक्टर है, वो आपको उसको झलकता हुआ दिखेगा। जब बड़े से बड़े संकट आता है, क्योंकि माएं थोड़े कमजोर दिल के होती हैं, जल्दी घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, घर में कोई मुसीबत आता है, कोई संकट आता है, तो पहाड़ के तरह जो जो धीरज के साथ खड़ा होता है पिता, ऐसा नहीं कि उसको डर नहीं लगता, इंसान मात्र के हरेक को डर लगता है, पर क्योंकि अपने परिवार को, अपने बच्चों को ऐसी संकट परिस्थिति में स्थिर रखना है, तो वो अपने डर को पीता है और सामने अपने आप को सुपर हीरो के रूप में पेश करता है। जिन जिन मां बाप के बच्चे आजकल, ये इंडियन न्यूज चैनल में एक न्यूज आता है, आप उस बाप की विवशता को समझ सकते हैं, मजबूरी को समझ सकते हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री में एक 18-20 साल का लड़का किसी के सुइसाइड केस में फंसा और वो जेल गया। उसका बाप बेचारा डेढ़ साल से फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोगों से बात कर रखी थी, अपना जो भी रिलेशन दे करके, समझा बुझा करके, रिक्वेस्ट करके कि मेरे बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में उसको रोल मिल जाए, सब कुछ तैयार हुआ था बाप के कारण, बेटे की कोई क्वालिटी नहीं थी। वो बाप बेचारा रगड़ नाक रगड़ रगड़ के उसके लिए फिक्स किया था, अब बेटा जेल में फंसा है, अब दिन रात बेचारा बाप को वहां भागना पड़ता है। जब बेटा या बेटी कुछ बुरा करते हुए होते हैं तो मां बाप पर आता है कि आपका कैसे कैसा संस्कार दिया था, ये आपके बच्चे हैं। तो बच्चों पर जब मुसीबत आती है तो भी मां बाप को झेलना होता है। ज्यादातर बच्चों के जीवन में जो खुशी आती है उसका बहुत कम हिस्सा, बहुत कम मां बाप तक जाता है। वो मां बाप बड़े भाग्यवान है जिनको अपने बच्चों की खुशी का डिविडेंट मिलता है, पर दुनिया में बहुत बड़े परसेंटेज मां बाप है जो बच्चों के खुशी की डिविडेंट उनको नहीं मिलता, बच्चे जो जीवन में तरक्की करते हैं, जिस तरह के सुख सुविधाएं भोगते हैं, वो उनको नहीं मिलता, उसके बावजूद भी वो खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे खुश हैं। इसीलिए वो जो धैर्य धारण करना, हर आवश्यकता में अपने आप को प्रस्तुत करना, जब कोई ना हो साथ में तो मां बाप होना, इसीलिए हमारे मनुस्मृति में कहा पिता मूर्ति प्रजापति है। प्रजापति मतलब क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, संसार को बनाने वाला। अगर ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, पर ईश्वर के कैरेक्टर को समझना है तो मनुस्मृति कहता है तुम्हारा खुद का पिता है, उसकी पर्सनालिटी को समझो तो तुम्हें ईश्वर बहुत थोड़ी बहुत समझने आने लगेगी। ये जो साथ में फोटो है वो फोटो वैसे नहीं है, ये बड़ा डिलिबरेटरी दिया गया है, आप समझ सके कि बाप होना सिर्फ हमारे जैसे आपके जैसे बाप नहीं है जो बड़े प्रिविलेज्ड हैं। दुनिया में करोड़ों ऐसे भी बाप हैं जो रोज मजदूरी करते हैं, बीमारी होने पर भी मजदूरी में जाते हैं क्योंकि घर में बच्चों को खाना खिलाना है, कपड़े देना है, उनको त्योहारों में उनके लिए तेल पाउडर लाना है, उनके लिए भी कुछ टॉफी चॉकलेट लाना है। जिन बच्चों को सिर्फ त्योहारों में टॉफी मिलता है, टॉफी ही उनके लिए है, उसके लिए माँ बाप को मेहनत करना पड़ता है, और माँ बाप पूरी जिंदगी बिता देते हैं, कुछ नहीं हासिल होता है, कुछ नहीं हासिल होता सिवाय अपने बच्चों को पालने का। इसीलिए कहा कि जो लोग अपनी जीवन में उन्नति चाहते हैं, यश कीर्ति जो भी आनंद चाहते हैं, वो जरूर अपने पिताओं को, पिता को रिस्पेक्ट दें, सम्मान करें। हमारे जो यहां पितृ यज्ञ का कंसेप्ट है, पितृ ऋण चुकाने का, अब पितृ यज्ञ को तो आजकल हम जब मां बाप मर जाते हैं तो हम श्राद्ध करते हैं। अब श्राद्ध तो मरने के बाद करते हैं, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया काम। श्रद्धा का मतलब होता है, श्रद्धा में दो शब्द है, श्रत जमा धा, श्रत का मतलब सच ट्रुथ, धा मतलब टू होल्ड। जिस भी काम में, जिस भी क्रिया में सच्चाई को धारण किया जाता है वो श्राद्ध है, बस श्रद्धा से किया जाने वाला काम। जब कोई आपको या हमें कहता है कि मां बाप के प्रति श्रद्धा रखो, या देश के प्रति श्रद्धा रखो, या गुरु के प्रति श्रद्धा, या किसी के प्रति श्रद्धा रखो, इसका सिंपल सा मतलब है आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो, उस ट्रूथ को होल्ड करो, उस सच को धारण करो जो सच है। मां बाप के प्रति श्रद्धा रख, श्राद्ध करने का इतना सा अर्थ है कि आप उस सच्चाई को एहसास करो, अनुभव करो, रियलाइज करो कि मां बाप ने हमारे लिए क्या किया है। और जिस दिन हम उसको रियलाइज कर पाएंगे कि उनके हमारे लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है और कितने दर्द उन्होंने सहा है हमें बनाने के लिए, पैदा होने से लेकर के अभी तक सहा है, जिस दिन जो भी व्यक्ति इसको रियलाइज करेगा कि उसकी मां बाप ने क्या सेक्रीफाइस किया है, वो जो कुछ भी बदले में करेगा दैट इज कॉल्ड श्राद्ध। आप उसमें फिर आप मां बाप की अपमान कर ही नहीं सकते हो, आप अपने मां बाप को दूर कर ही नहीं सकते हो, आप मां बाप को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, आप जरूर उसकी पूजा करोगे, जरूर उनका ख्याल रखोगे। वो जो मां बाप की पूजा करना, श्रद्धा रख, उनके ख्याल रखना, उनको रेस्पेक्ट देना, अपने जीवन में ऊंचा स्थान देना इस भावना के साथ कि उनका मेरे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसी को श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध कर्म। अब क्योंकि इंडियन सोसाइटी एक तरह के ओवरऑल हिपोक्रेट सोसाइटी है, मतलब हम लच्छेदार बातें जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते,
भारत में मां बाप के प्रति खराब व्यवहार काफी हद तक बढ़ चुका है। वो मुगलों में जैसे औरंगजेब शाहजहां की कहानी थी उससे भी बदतर हालत में, सभी नहीं पर ज्यादातर इस तरह के ट्रेंड अब भारत में भी देखने को मिला है। पर इतना जरूर हम करते हैं कि जब मां बाप जीते जी तो हम कम पूछते हैं, मरने के बाद श्राद्ध पक्का करते हैं, पिंड देना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। ये जो हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी है, ये पाखंड है। श्राद्ध का सिर्फ इतना अर्थ था कि जो फादर्स डे जो अमेरिका में मनाया जाता है उनके मॉडर्न वे में, हमारे लिए यही था कि पिता माता के प्रति श्रद्धा भाव रखो, यही पितृ यज्ञ है। और आपको पता है जो हमारे जीवन में तीन ऋण है, तीन डेब्ट्स, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, मतलब जब से हम पैदा होते हैं और आगे बढ़ते हैं हमें जिंदगी में तीन तरह के हमारे लाइफ में मुठगेज है, ऐसे ऋण है जिनको हमें चुकाना है। एक तो मां बाप का ऋण, एक देवता का, ईश्वर और नेचर का जो जो डिप्स है, और ऋषि ऋण मतलब जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, जो 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 वो ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, जो फ्लो ऑफ नॉलेज है जो आखिर में हमें अपने टीचर या बुक के द्वारा मिला, उन तीनों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उस ऋण को चुकाएं। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बात है कि पितृ ऋण के लिए क्या क्या करने की जरूरत है कि पिता का ऋण चुकाया जाए। आपको पता है क्या लिखा गया? ये नहीं लिखा गया कि मां बाप की सेवा करो, एक बच्चे पैदा करके पालो। पता है क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद मां बाप बनोगे नहीं, समझ ही नहीं सकते हो कि मां बाप ने कितना आपके ऊपर कितनी त्याग किया है, कितना बलिदान दिया है। और हम सब जानते हैं जब हमारा कोई पहला बच्चा होता है तब जब 6-6 महीने तक, साल भर तक रात की नींद खराब होती है, तब उस वो हर रात में याद आती है कि मेरे मां बाप ने मेरे लिए ऐसे ही किया होगा। जब बच्चे हुड़दंग मचा करके कितनी आपकी पेशेंस की परीक्षा लेते रहते हैं तब याद आता होगा कि मां बाप हमारे कितने, हम भी उनकी कितनी परीक्षा लिए होंगे। जब तक हम खुद मां बाप बनते नहीं है तब तक हमें एहसास ही नहीं होगा कि मेरे बाप बाप के मेरे लाइफ में क्या उनका योगदान है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, पितृ ऋण चुकाने का सबसे अच्छा तरीका तुम खुद मां बाप बनो, फिर अपने आप रियलाइज करोगे कि तुम्हें मां बाप के लिए क्या करने की जरूरत है। इसीलिए कहा सुंदर चीज, उपाध्यायम पितरम मातरम च ये भी द्रुह्यन्ति मनसा कर्मणा च तेषां पापं भ्रणहत्या विशिष्टं तस्मान्नान्य पापकृदस्ति लोके। जो लोग अपने मां बाप और गुरुजनों को के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको दुनिया का सबसे बड़ा पाप वो कमाते हैं। और बोले सबसे बड़ा पाप क्या है? भ्रूण को हत्या करना, किसी फेटस को हत्या करने से बड़ा पाप कुछ नहीं है। उससे भी बड़ा पाप है अगर आप अपने पिता माता या टीचर्स की अपमान करते हैं। ये एहसास दिलाने के लिए कि जीवन में तुम्हारे जिसका सबसे बड़ा रोल है, आप उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, ऐसे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के हर रिलीजियन में ईश्वर के साथ भक्त को जोड़ने के लिए जो संबंध होता है, ईश्वर को बुलाने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसमें हम मां बाप का शब्द यूज करते हैं। अब पूरे वेदों में, उपनिषदों में, गीता में ईश्वर को पिता के रूप में, फादर या मदर के रूप में बार बार संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर को देखा नहीं, जाना नहीं। और अगर हमारे लाइफ में कोई सेल्फलेस सेक्रीफाइस हमने कभी देखा है तो वो मां बाप का है। इसीलिए हम ईश्वर से उसी को उपमा देते हैं। जो वेदों में जो आहुति देते हुए बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, तो आप उसको वही संबोधन तो करते हैं, यू आर द एडोरेबल फादर, यू आर द ग्रेटेस्ट फादर। ये फादर ही क्यों कहते हैं, उसकी मदर क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे बड़ा कोई सुंदर सम्मान और हो ही नहीं सकता जब आप किसी को पिता या माता कहते हो। तम ही न पिता वसो तम माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम नमी महे। एक छोटी सी और इंग्लिश कविता कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। किसी ने अपने पिता पर एक छोटी सी कविता लिखी इंग्लिश में, ए डैड इज समवन हु वांट्स टू कैच यू बिफोर यू फॉल बट इंस्टेड पिक्स यू अप ब्रशेस यू ऑफ लेट्स यू ट्राई अगेन। ये मां बाप में जो अंतर है, बाप की जो कठोरता, उस कठोरपन के पीछे जो कोमलता छिपी हुई है। ए डैड इज समवन हु वांट्स टू कीप यू फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स बट इंस्टेड लेट्स यू फाइंड योर ओन वे इवन दो हिज हार्ट ब्रेक्स इन साइलेंस व्हेन यू गेट हर्ट। ए डैड इज समवन हु होल्ड्स यू व्हेन यू क्राई, scolds you when you break the rules, shines with pride when you succeed, and has faith in you even when you fail। ये जो कठोरता का और कोमलता का जो मिक्सचर है, ये बाप को मां से अलग करता है। ये माओ में हम ये नेचुरली ये कम होता है कि पिता अपने प्यार को अंदर रखता है, अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए वो अपनी कठोरता को दिखाता है। अंदर वो कितना भी कोमल हो, अकेले में वो कितना भी रोए, पर सामने हमेशा कठोरता का व्यवहार करता है। समय क्योंकि बदल रहा है, जिन मां बाप की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल जो जिस तरह के माहौल है, अब हर मां बाप ऐसा है। बहुत सारे मां बाप धीरे धीरे प्रोफेशनल पेरेंट्स बनते जा रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल टीचर बन गए, और उसका दुष्परिणाम हम सोसाइटी में देखते हैं। बच्चों की परवरिश में फर्क दिखता है। जब मां बाप अपने खुशी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने प्लेजर के लिए बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, फिर हम खुद के कर्तव्यों से भी पाप करते हैं, हम समाज के लिए साथ भी घोर अन्याय करते हैं। हमारा कर्तव्य है, ये सृष्टि में ये एक हमारे पास एक नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नेचुरल राइट है, ये प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक दायित्व है कि हम अपने बच्चे को अच्छा बनाएं और समाज में अच्छा बनाकर भेजें। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपनी कमाई के स्वार्थ के लिए, अपने खुद के लालच के लिए, जो भी है, हम बच्चों को वो समय नहीं दे पाते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते हैं, वो जो सैक्रिफाइस हम नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है उसमें किसी को सेल्फ एंजॉयमेंट होता हो, पर ऐसे व्यक्ति को फिर मां बाप बनना नहीं चाहिए था जिसको सेल्फ एंजॉयमेंट की इतनी चिंता होती है, क्योंकि वो समाज को भी एक गलत संतान देता है, गलत नागरिक देता है, और खुद भी अपने घर में एक गलत संतान को जन्म देता है। ईश्वर की सृष्टि में ये मां बाप का कर्तव्य है कि ये बच्चों को ठीक से परवरिश करे, अगर जन्म दिया है उनको अच्छी तरह पालें, उसके लिए समय दें, उसके लिए पेशेंस धैर्य रखें, और पिता माता का जो प्राकृतिक कर्तव्य है उसको जरूर निभाएं। ये दुख की बात है कि ये मॉडर्न एज में, ये आधुनिक युग में, अब मां बाप भी बहुत कुछ मां बाप जैसा नहीं रह गए, और उसका परिणाम है कि जब वो बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों को कोसते हैं कि ये हमारा ख्याल नहीं रखते, हमारा ये नहीं करते, पर भूल जाते हैं कि जब वो बच्चे थे, जब उनको आपकी जरूरत थी, जब वो आपके साथ खेलना चाहते थे, जब वो आपके पास साथ समय बिताना चाहते थे, आप ऑफिस में पूरी जिंदगी बिता दिए, आप क्लब में बिता दिए, आप इधर घूमने में बिता दिए, तब आपके पास समय नहीं था सिर्फ पैसा फेंकने के अलावा। तो बच्चे बड़े होकर भी पैसा फेंक देते हैं, फिर उनकी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए ये चक्र है, साइकिल है। हम अपने बच्चों को जिस तरह पालते हैं, बच्चे फिर बड़े होकर के, हो सकता है टीन एज में वो अपना रिवोल्यूशन दिखाएं, पर आफ्टरऑल जब वो बड़े होते हैं, वो अपने माँ बाप के महत्व को समझते हैं, फिर हमसे भी वैसे ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ये साइकिल है। तो हम अच्छे माँ बाप बने, अपने बच्चों की परवरिश पूरी निष्ठा से करें, और ये बच्चों का कर्तव्य है कि वो बड़े होकर माँ बाप की श्रद्धा करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के शुभ दिन पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संसार के सभी पिता या दादा, ईश्वर उनको आशीर्वाद दें, स्वस्थ रहें, सबल रहें, और इसी तरह ये सृष्टि प्रक्रिया आगे चलती रहे। और सभी पिताओं को और दादाओं को बहुत बहुत अभिनंदन। ईश्वर उनको खुश रखें।